हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 37, 38, 39 एंड 40। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता श्रीराधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि श्री। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद सातवां अध्याय जिसका शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक नंबर 37। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। स्वप्राणान्यः पर प्राणे प्रपुष्णान्त्य गृण खल तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाध्यात्यदः पुमान्। स्वप्राणान् यः परप्राणे प्रपुष्रात्यग्रणाखला तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाध्यात्यदः पुमान् स्वप्राणान्यः परप्राणै प्रपुष्रात्य ग्रखल यद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाध्यात्यदः पुमान् स्वप्राणान्यः परप्राणै प्रपुष्रात्य ग्रखल तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाध्यात्यदः पुमान्। शब्दों का अर्थ स्वप्राणन अपना जीवन या जो पर प्राण दूसरे के जीवन के मूल्य पर प्रपुष्णाति ठीक से पालता है, अघ्रण निर्लज खल दुष्ट तत्वधा उसको मार देना चाहिए, तस्य उसका ही निश्चय ही श्रेय श्रेयस्कर यत जिस दोषात दोष से याति जाता है अधा नीचे गिर नीचे की ओर पुमान मनुष्य। अनुवाद, ऐसे क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति का जो अन्य के प्राणों पर पलता है वध किया जाना उसके लिए श्रेयस्कर है, अन्यथा वह अपने ही कर्मों से अधोलोक यानी नरक की ओर चला जाएगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे कि जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता पूर्वक दूसरे के जीवन पर पलता है उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा यह है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राण दंड दिया जाए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राण दंड देता है तो अभियुक्त के लिए यह अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जीवन में इस हत्या के कर्म के लिए फल भोगना नहीं पड़ता। ऐसा दंड पात्र उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है। और स्मृति शास्त्र में कहा गया है कि जिन्हें राजा के द्वारा प्राण के बदले में प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोग जाने के पात्र बन जाते हैं। नागरिक संहिता तथा धर्म के महान लेखक मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि पशु कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम जाने के लिए अपने को योग्य बनाना है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई भी यदि किसी को मारता है तो उसकी बदली में उसको प्राण दंड देना ही उसके लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर मनुष्य तो दूर की बात है, अगर पशु को भी यदि मारा जाता है तो उसको भी उस मारने वाले को भी पूरा वध कर देना चाहिए, क्योंकि जो सभ्य जीव होते हैं ना वो कभी भी पशु भक्षी नहीं होते, यानी कि वो खाते नहीं है, जानवरों का गोश्त नहीं खाते हैं। क्योंकि वास्तविक मनुष्य का क्या लक्ष्य होता है कि वो भगवत धाम जाने के लिए अपने को योग्य बनाए। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी दलों का नियत षड्यंत्र रहता है, अतएव वे उसी प्रकार दंडनीय है जिस प्रकार के षड्यंत्र करने वालों का एक मिला जुला दल किसी मनुष्य को मार दे। जो पशु वध की आज्ञा देता है, जो पशु वध करता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है, और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं। और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय हैं। चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता, अतएव उसे उसका तनिक भी अधिकार नहीं है कि वह मनमानी करके किसी जीव का वध करे। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति प्राप्त है और ऐसी अनुमति कसाई घरों के खोलने पर प्रबंध लगाने के लिए है, ना कि पशु वध को प्रोत्साहन करने के लिए। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है, वह बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों के हित में है। यह पशु के हित में यूं है क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है और पशु भक्षण भी स्थूल पापों से बच जाता है। चलाए जा रहे कसाई घरों से प्राप्त मांस समाज देश तथा जनता के लिए सभी प्रकार के रोगों का कारण है। यह भौतिक जगत स्वयं ही दुखों से पूरित स्थान है और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहन करने से सारा वातावरण युद्ध महामारी अकाल तथा अन्य कसाई अवांछित विपत्तियों से अधिक दूषित होता जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं गुरु दुवाचालं पंगुं लंघयति गिरां यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। जैसा कि हमने पढ़ा कि अश्वत्थामा को पकड़ लिया अर्जुन ने और दोनों ब्रह्मास्त्र को शमन कर लिया। अश्वत्थामा को पशु की तरह रस्सियों से बांध कर वो लेकर आ रहे थे शिविर में ले जाने के लिए, और रास्ते में ही भगवान ने उसे क्या कहा कि मैनम पार्थार्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधुम जही ब्रह्म बंधुम विमम जही यो सावनाग सहसुप्तन अवधीनिशी पालकान। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। और आगे भगवान कहते हैं, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बाल स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुं हन्ति धर्मवेत्। धर्म का ज्ञाता ऐसे व्यक्ति का वध नहीं करता जो लापरवाह नशे में मस्त पागल सोया हुआ डरा हुआ या रथ विहीन हो, ना ही वह बालक स्त्री मूर्ख प्राणी शरणागत व्यक्ति का वध करता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज भगवान कहते हैं, स्वप्राणान यह पर प्राण है कि भले ही हर किसी को जीने का अधिकार है, परंतु अपने प्राण बचाने के लिए किसी दूसरे को मारकर जीने का अधिकार किसी को नहीं है। तो यदि कोई अपने शरीर को पुष्ट करे, स्व प्राणान यह पर प्राण है, अपने प्राण की रक्षा करने के लिए दूसरे के जीवन को की हत्या करना और प्रपुष्णाद्य घृण खल, प्रपुष्णाद्य मतलब अपने शरीर को अच्छे से पुष्ट बनाने के लिए और दूसरे के शरीर को मार डालना, ऐसे अघ्रण यानी निर्लज खल यानी दुष्ट। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने परपट में बताया कि वो व्यक्ति जो अपने शरीर को पुष्ट बनाने के लिए मांस आहार करते हैं, मांसाहार करने का एक ही लक्ष्य होता है कि वो अपनी जिह्वा को टेस्ट देना चाहते हैं और कहते हैं कि इससे हमारा शरीर जो है वो बहुत ज्यादा पुष्ट बनेगा। तो किसी को कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर लिखा कि प्रपुष्ण यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक तरीके से उसको तेल में भून करके और तल करके उसको फ्राई करके बहुत है ना ऐसे स्वादिष्ट अपने हिसाब से बनाकर वो खाते हैं। क्यों खाते हैं? ताकि उनके शरीर को पुष्ट हो। तो जो वास्तव में शास्त्र है, मानव संहिता है या दूसरे जो शास्त्र हैं, धर्म शास्त्र हैं, उनमें इस बात की कहीं पर भी इजाजत नहीं दी गई है कि आप अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए किसी भी जीव की हत्या करके उसको खा सकते हो। ये बिल्कुल ना अपराधी है। जिस तरह से यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि वो सब दंडनीय है, जो मांस आहार करते हैं, जो मांस को भक्षण काटते हैं, जो खरीदते हैं, जो बेचते हैं, जो भी है, वो सब दूसरों की हत्या करके, किसी के बच्चे की हत्या करके आप कैसे अपने जीवन का अपने जीवन की वृद्धि कर सकते हो? ये तो साफ साफ घोर अपराध है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये उसी तरह दंडनीय है जिस प्रकार के षड्यंत्र करने वालों का एक मिला दुला दल किसी मनुष्य को मार डाले। जो पशुवत की आज्ञा देता है, वो जो पशुवत करता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस खाता है और जो पकाता है, जो भक्षण करता है, जो वितरण करता है, सभी हत्यारे हैं। शास्त्र में इन सबको दंडनीय कहा गया है, क्योंकि जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता के पूर्वक दूसरे के जीवन पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तद्वदस्तस्य ही श्रेय। भगवान कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अगर इसको मारोगे ना तो इसका इसका ही श्रेय होगा। तद्वदस्तस्य ही श्रेय, उसको मारने में इसका भला होगा, क्योंकि यदि तुम इसको नहीं मारोगे तो क्या होगा? यद्दोषात् यदः पुमान। अगर इसको इसके कर्मों का यहाँ पर ही अगर दंड नहीं मिला ना तो ये कहाँ जाएगा? अधः पुमान, नरक में चला जाएगा और नरक में इसको बहुत बहुत यातनाएं दी जाएंगी। तो ऐसा स्मृति शास्त्र में बताया जाता है कि जिन पापियों को यहाँ राजदंड मिल जाता है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, वे लोग नरक में नहीं जाते हैं। और क्योंकि इस दंड के लिए यहाँ पर ही इसको सजा मिल गई है, तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो वो नरक से बच गया और दूसरा क्या होगा, उनके दंड को देखकर अन्य लोग भी पाप नहीं करेंगे। तो इस तरह से दो फायदे होते। इसीलिए राजा को चाहिए कि तत्काल ही हत्यारों को पनिशमेंट दी जानी चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन आजकल का समाज बड़ा दयालु हो गया है। 20-30 साल तक केसेस चलते रहते हैं, किसी को कोई हत्यारा होता है उसको डाल देते हैं जेल में, और जब बहुत सालों तक केस चलता रहता है, बंदा ऐसे ही मर जाता है, उसको सजा ही नहीं मिलती अपने दंड की, अपने अपराध की, और है ना वो लोग फिर भी उसको सजा नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं, पहले जमाने में होता था राजा तुरंत ही उसको दंड देता था, और यहाँ पर जो इस विश्व को बनाने वाले वही भगवान आज धर्म का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यद्यपि इसने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण का पुत्र है, परंतु ये ब्रह्म बंधु है, मार डालो अर्जुन इसको, ये जिंदा रहने के योग्य नहीं है। यद्यपि अर्जुन के लिए ये उचित नहीं था कि वो गुरु पुत्र का वध करे और ना ही अर्जुन करेंगे, परंतु सामान्य नीति भगवान आज बता रहे हैं कि यदि कोई किसी का वध करता है तो उसकी बदली में उसको उसकी जान ले लेनी चाहिए। और भगवान ने कह दिया तद्वदस्तस्य ही श्रेयो, इसी से इसका कल्याण होगा, इसको जल्दी से इसका वध कर दो, इसका मस्तक लेके चलो, फेंको दड़ को इस हत्यारे का, कुत्ते खाए चाहे गिद्ध खा ले। और दूसरी बात ये है, भगवान आगे बताते हैं कि तुम्हें इसको मारना ही पड़ेगा। क्यों? भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 38 में, प्रतिश्रुतम च भवता पांचाल्येष्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः। प्रतिश्रुतम प्रतिश्रुतं च भवता पञ्चाये श्रवतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्तेमानिनि पुत्रः प्रतिश्रुतं च भवता पञ्चाये श्रवतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्तेमानिनि पुत्रः प्रतिश्रुतं च भवता पञ्चाल्ये श्रवतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्तेमानिनि पुत्रः। शब्दों का अर्थ, प्रतिश्रुतं वचन लिया तुमने, च तथा भवता तुम्हारे द्वारा, पांचाल्ये पांचाल देश की पुत्री, पांचाल देश के राजा की पुत्री यानी द्रौपदी को श्रवतम सुना गया मम मेरे द्वारा, आहरिष्ये मैं अवश्य लाऊंगा सिर को तस्य उसका, यह जिसने ते तुम्हारे माननी मानते हो पुत्रहा पुत्रों का वध करता। अनुवाद, इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी के यह से यह प्रतिज्ञा करते हुए सुना है कि तुम इसके पुत्रों के वध करता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि एक तो इसका श्रेय इसी से होगा क्योंकि ये नरक में जाने से बच जाएगा और इसको स्वर्ग मिलेगा, और दूसरा ये कि ऐसे आतताई को तो मारना ही चाहिए, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्योंकि तुमने अपनी पत्नी को द्रौपदी को पांचाल देश के राजा की पुत्री को तुमने खुद वचन दिया था, प्रतिश्रुतं भवता तुमने ये वचन दिया था कि मैं आहरिष्ये शिरस्तस्य उस जिसने तुम्हारे बेटे को मारा उसका सिर लेकर आऊंगा, तो ये तो तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए क्योंकि यदि कोई अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता है तो वो नरक में चला जाता है। तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए इसका सिर काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, किसको खबर है, कौन गवाह है? तो भगवान कहते हैं, श्रोतो मम, मैंने अपने कानों से सुना था तुमने द्रौपदी को ऐसे बोला था कि मैं तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे का सिर काट के लेकर आऊंगा, तो काटो इसका सिर, तुम्हें इसको मार डालना चाहिए, इसका सिर काट देना चाहिए, इसलिए इस पाप आत्मा का वध करो। और यहाँ पर तीसरा कारण भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, श्लोक नंबर 39 में भगवान कहते हैं, तदसौ वध्यतां पापं आततायात्मबन्धुहा भर्तुश्च विप्रियं वीर कृत्वान् कुलपांसन। तदसौ वध्यतां पापं आततायात्मबन्धुहा भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसन। तदसौ वध्यतां पाप आततायात्मबन्धुहा भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसन। तदसौ विध्यतां पाप आततायात्मबन्धुहा भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसन। शब्दों का अर्थ, तदसौ विध्यतां पाप, तद अतः असौ यह व्यक्ति वध्यतां का मतलब होता है मारा जाए, पापी आतताई हमला करने वाला आत्मबंधुहा अपने बंधुहा यानी पुत्रों का मारने वाला भर्तु स्वामी का, च विप्रियम संतुष्ट ना करके वीर हे योद्धा कृतवान करने वाला कुल पांसहा कुल की राख। अनुवाद, यह व्यक्ति तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वध करता आतताई है, यही नहीं उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है, वह अपने कुल की राख यानी कुलंगार है, तुम अविलंब इसका वध कर दो। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय हो। शीला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलंगार कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था, यद्यपि वह शत्रु पक्ष में चला गया था, लेकिन सारे पांडव उसका सम्मान करते थे। और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उसे नमस्कार किया था। इस प्रकार उसमें कोई खराबी नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कर्म करके अपने को पतित बना लिया था, जिसे द्विज कभी नहीं करते। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या की थी, जिससे उसका स्वामी दुर्योधन भी अप्रसन्न हुआ था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अर्जुन के ही कुटुंबियों का वध करता आतताई बन गया, अतएव वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरे के घर में आग लगा देता है, अन्य की पत्नी का हरण कर देता है, वह वध्य है। कृष्ण ने अर्जुन को ये बातें बताई जिससे वह उन पर ध्यान दे और तदनुसार कार्यवाही करें। शिल प्रभुपाद की जय हो। तो यहाँ पर आगे भी बताते हैं, भगवान कहते हैं कि एक तो ये आतताई है, इसने तुम्हारे अपने बंधुओं को आततायात्म बंधुआ सारे बंधुओं की हत्या इसके कारण, तुम्हारे सोते हुए बेटों को मारा और उन बेटों को तुम्हारा, और इसने क्या किया, भर्तुष्य विप्रियम वीर, जो इसका अपना स्वामी दुर्योधन है, दुर्योधन ने इसको पाला पोसा, इसके लिए हर चीजें प्रोवाइड की और उसकी मृत्यु का कारण भी ये बना। और सबसे बड़ी बात कि कृतवान कुल पांसना के कुलंगार है, अपने पूरे कुल का नाश करने वाला। हालांकि द्रोणाचार्य कितने सम्मानीय व्यक्ति थे, लेकिन इसके बेटे ने ऐसा कार्य किया जिसके कारण उसके पिताजी, जिसकी पहले द्रोणाचार्य तो पहले से मर गए थे, अब मरे हुए द्रोणाचार्य को भी दुख हुआ होगा कि ऐसा कुलंगार मेरे वंश में पैदा हुआ, तुम्हें इसका वध कर लेना चाहिए, इसीलिए इस पाप आत्मा का वध करो। और यहाँ पर बताए गए कारण कि सबसे पहले तो कहा, अगर जीवित रह जाएगा तो नरक में जाएगा, और दूसरा ये कि अगर तुम इसको मार डालोगे तो इसका श्रेय होगा, क्योंकि उसके अपराध यहीं पर समाप्त हो जाएंगे, और इस यहाँ पर समाप्त हो गए तो हो सकता है स्वर्ग में चला जाए। और दूसरा ये कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो ना, मैंने खुद सुना था अपनी पत्नी को, तुमने बोला था कि मैं इसका सिर लेकर आऊंगा तो तुम इसको मारो। और तीसरा ये कि अपने स्वामी का भी अहित किया है। और दूसरा ये आगे भी कहा कि नीति भी तो यही कहती है कि ऐसे आतताई को, जो आतताई होता है, जो बगैर चेतावनी दिए किसी को मारता है, सोए हुए की हत्या करता है, जहर देता है, घर जलाता है, पत्नी को हरण कर देता है किसी की, तो उसको मार डालना ही उसके लिए श्रेय है। इसलिए सब प्रकार से तुम्हारा धर्म है कि इसका वध कर देना। अद्भुत भगवान बोल रहे हैं। एक तो अर्जुन पहले से क्रोध में है, जो पहले से ही क्रोध में हो उसको और भी इंसिकेट किया जाए, ललकारा जाए, तो वो क्यों नहीं मारेगा, अवश्य मारेगा। लेकिन मारे अर्जुन इस दशा में भी अर्जुन नहीं मार रहे हैं। ये क्या है, अर्जुन की महानता। यद्यपि श्री कृष्ण यहाँ पर प्रेरित कर रहे हैं, बारंबार बोल रहे हैं मारो मारो, मैं बोलता हूँ मारो, तुम तो मेरे शिष्य हो, मैंने भगवद गीता का उपदेश दिया, तुम मेरे शरणागत हो, मेरा आदेश है कि तुम मारो, तुम मेरे समर्पित हो, मेरे आदेश का पालन करो। परंतु अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अर्जुन वह व्यक्ति है जिसको अपना मित्र कहते हुए भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस अवस्था में वो किस तरह से कार्य करेंगे, अभी आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितं नैच्छद्धन्तं नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् एवं परीक्षता धर्मं पाठ कृष्णेन चोदितं नैच्छत्थन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् एवं परीक्षिता धर्मं पाठ कृष्णेन चोदितं नैच्छत्थन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् एवं परीक्षता धर्मं पाठ कृष्णेन चोदितः नैच्छत्थन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् सूत उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा एवं परीक्षता, एवं यह परीक्षता परीक्षा लेते हुए धर्म कर्तव्य के मामले में पार्थ श्री अर्जुन कृष्णेन भगवान कृष्ण द्वारा चोदिता प्रोत्साहन किया जा रहा है। न एच्छत नहीं चाहा हम तो मारना गुरुसुतम अपने गुरु के पुत्र को यद्यपि आत्महनम पुत्रों का वध करता महान बहुत बड़ा। अनुवाद सुख गोस्वामी ने कहा कि यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। भले ही अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निशंस हत्यारा था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद वाला, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते अर्जुन निसंदेह महात्मा था। यह यहाँ भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने गुरु के पुत्र को प्राण दान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसा जघन्य कर्म किया है जो किसी के भी हित में नहीं है, लेकिन आखिर है तो वो द्रोणाचार्य का ही पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर बाहर प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा पूरा बोध नहीं था, ना ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनभिज्ञ थे, लेकिन श्री भगवान ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करके ली है। गोपियों की भी ऐसी ही परीक्षा ली गई थी, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खड़े उतरे हैं। श्री प्रभुपाद की जय हो। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं एवं परीक्षिता धर्मम पार्थः कृष्ण चोदिता, कि यहाँ पर इस दशा में भगवान अर्जुन के धर्म की परीक्षा ले रहे हैं कि क्या इस समय अर्जुन अपने गुरु के साथ अपने संबंध को याद रखते हैं या भूल जाते हैं। भगवान परीक्षा ले रहे हैं और वो समय कैसा है जब अर्जुन कितना क्रोध में है। अगर कोई साधारण मनुष्य इस समय, जिस समय वो इतना ज्यादा क्रोध में हो, तो उस समय ऐसी परीक्षा पर उत्तीर्ण होना असंभव हो जाए उसके लिए। जो व्यक्ति अपने 6-6 पुत्रों की हत्या के कारण दुखी है, अभिमन्यु की इन हत्यारों ने इस तरह से हत्या की, साथ साथ महारथियों ने मिलकर, और उसके 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला, और आज अर्जुन कितना दुख और क्रोध में है। इस दिशा में अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि मार डालो इसको, ये हत्यारा है, वैसे इसको ये तो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है, ऐसा आतता ही है। ऐसी दशा में कोई साधारण व्यक्ति होता ना, थोड़ा सा इशारा पाते ही तुरंत मार डालेगा, लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं मार रहे हैं। वास्तव में भगवान की इच्छा भी यही थी। क्या इच्छा थी कृष्ण की? कि अर्जुन की धर्म निष्ठता, जो अर्जुन जितना धर्म परायण है, जगत में भगवान उस धर्म निष्ठा को विख्यात करना चाहते, यही भगवान चाहते थे। इसीलिए भगवान ने परीक्षा दी थी। ऐसा नहीं था कि भगवान जानते थे, भगवान ये देखना चाहते थे कि अर्जुन क्या करेंगे क्या नहीं। भगवान को सब पता था, भगवान सब जानते हैं, लेकिन फिर भी संसार में मेरे भक्तों की ख्याति हो, इसलिए भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, सब महान भक्तों की परीक्षा होती है। हरिदास ठाकुर की परीक्षा हुई, 22 बाजारों में उनको कोड़े मारे गए कि हरि नाम छोड़ दो तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा, धन दौलत हर कुछ चीज दी जाएगी, लेकिन उन्होंने हरि नाम नहीं छोड़ा। प्रहलाद को बोला, उसके पिताजी हिरण्यकश्यपु ने बोला कि एक बार तुम जय हिरण्यकश्यपु बोल दो और ये विष्णु भगवान की जय करना छोड़ दो। प्रहलाद ने बोला, मार डालो मुझे, मगर मैं विष्णु भगवान की जय नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी भी हिरण्यकश्यपु की जय नहीं कहूंगा। उसी प्रकार गोपियों की परीक्षा ली थी भगवान ने, जब सारी गोपियां रात के अंधेरे में भगवान की बांसुरी सुनकर रास मंडल की ओर आई, तब सारी गोपियों को भगवान ने कहा, ये तुम अंधेरी रात में यहाँ पर क्यों आ गए हो? तुम्हें नहीं पता पतिव्रता स्त्रियों को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पर पुरुष से प्रेम बहुत भारी दुख प्राप्त का हो सकता है। तुम लोग, मैं तो तुम मुझसे तो तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है, तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? तुम्हारे घर में तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, गौओं के बछड़े सभी दुखी होंगे तुम्हारे बगैर। तुम चली जाओ यहाँ से, हमारे साथ तो तुम्हारा क्या संबंध है? प्रेम करती हो तो प्रेम का मतलब ये थोड़े है कि हम साथ ही रहे, हृदय में याद करो, स्मरण करो मेरा, लेकिन यहाँ से चले जाओ। और श्रवण और कीर्तन से तो प्रेम होता है। तो गोपियों ने कह दिया, भले ही हम मर जाएंगे परंतु वापस नहीं जाएंगे। भगवान के सारे शब्दों को काट काट के रख दिया और फिर भगवान ने कहा, हाँ ठीक है, आई हो तो अब रास करते हैं। मतलब भगवान पल पल में अपने भक्तों से को आजमाते हैं, देखते हैं कि भक्त के अंदर कितनी दृढ़ता है मेरे नाम के प्रति, मेरे प्रेम के प्रति। और इसीलिए आज भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। और ऐसा समय है कि उस परीक्षा को पार करना एकदम असंभव नहीं है एक साधारण प्राणी के लिए, लेकिन ये अर्जुन कोई साधारण प्राणी नहीं था। और सूत गोस्वामी ने अर्जुन के लिए केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया है, महान, कि क्योंकि अर्जुन महान है। वो जानते भी थे कि यद्यप्यात्महानम, कि वो जानते थे कि मेरे पुत्रों का इसने वध किया है और इसी के कारण मेरी पत्नी इतनी दुखी है, लेकिन फिर भी वो महान थे। क्योंकि जिसे भगवान अपना मित्र मानते हैं, जिसका रथ हांकने में अपनी शोभा मानते हैं, कितना प्रेम करते हैं कृष्ण अर्जुन से। यहाँ तक जब अर्जुन, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के महल में गए थे, तब साफ साफ कह दिया था कि जो अर्जुन का मित्र है वो मेरा मित्र है और जो अर्जुन का शत्रु है वो मेरा शत्रु है, इसलिए दुर्योधन मैं तुम्हारे घर पे खाना नहीं खाऊंगा, तुम्हारे घर का भोजन में स्वीकार नहीं करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसा अर्जुन था, वो कितना महान होगा जिसकी मित्रता पर भगवान को गर्व है। वास्तव में भक्तों, इस अध्याय में अर्जुन की और द्रौपदी की महिमा के विषय में बताया जाएगा, क्योंकि भगवान ने जिनको चुना है अपना सखा बनाया, द्रौपदी को अपनी सखी कहते थे कृष्ण, वो कोई साधारण व्यक्ति हो नहीं सकते किसी भी स्थिति में। यहाँ पर हमें एक बात बताई जा रही है कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, व्यक्ति को अपना संबंध अवश्य देखना चाहिए। जिन जिन व्यक्तियों से हमने कुछ सीखा है, जिनसे हमने शिक्षा ली है, और उसके कारण इस संबंध के अनुसार जिस जिससे हमारा कोई रिलेशन है, जिसने हम पर कोई उपकार किया है, हमें उस उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। आजकल हम अपने गुरुजनों की इतनी और फिर बाद में उनके साथ है ना एब्यूज वर्ड्स टीचर्स को बोलते हैं या जिनसे सीखते हैं। लेकिन हमें शास्त्र से ये सीखना चाहिए, चाहे सिखाने वाला या फिर उनका कुल, उनका इवन द्रोणाचार्य की बात नहीं हो रही, उनके पुत्र की बात हो रही है। इसने इतना बड़ा अपराध किया है, फिर भी अर्जुन उसके साथ ऐसा सलूक नहीं कर रहे हैं। तो यही बात कि अपने धर्म और कर्तव्य से कभी नहीं हटना चाहिए। अर्जुन को भगवान याद कराते हैं कि आपने प्रतिज्ञा की है तो आपको अवश्य इस प्रतिज्ञा को पालन करना चाहिए, परंतु क्रोध में आकर यदि हम कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है तो उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। एक बार अर्जुन ने पहले भी प्रतिज्ञा की थी कि यदि मुझे कोई बोलेगा ना कि अपना गांडीव धनुष फेंक दो तो मैं उसका वध कर दूंगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि युधिष्ठिर महाराज ने गुस्से में बोला कि अपना गांडीव धनुष फेंक दो, तो अब अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे ऐसे बोलेगा मैं उसको मार लूंगा। तो गांडीव उठाया और युधिष्ठिर को मारने के लिए जा रहा था। अर्जुन ने कहा कि क्या कर रहे हो, तो बोला मैंने प्रतिज्ञा की है। कृष्ण ने बोला अरे नालायक, तुमने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं उसको मार डालूंगा, तो क्या अपने बड़े भाई को मारोगे? तो फिर अर्जुन ने कहा क्या करूं, अब तो मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। तो फिर भगवान ने कहा बड़े लोगों का अपमान जो है वो भी उसकी मृत्यु के बराबर है, तो उनका अपमान करो। तो क्योंकि तुम में ना बहुत बहुत प्रतिज्ञाएं करते रहते हो उल्टी सीधी, अब जाओ उसका अपमान करो। तो फिर अर्जुन ने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज को बोला तुम तो जुआ खेलते हो, जोरी हो और जुआरी हो, अपनी पत्नी का अपमान हुआ, तुम्हारी वजह से हम लोग वन में गए, तुम्हारी वजह से 13 साल हमने वन में गुजारे, 1 साल अज्ञातवास में रहे, तो तुम कैसे इंसान हो, तुम तो बिल्कुल सही नहीं हो, मतलब इस तरह की बहुत सारे अपमानजनक बातें उसको कोई कहे। और फिर भगवान उनको सिखाते हैं कि हर उस प्रतिज्ञा जो क्रोध में आकर की जाती है या फिर उसको पालन करना इतना ज्यादा आवश्यक नहीं है। क्योंकि अभी कुछ लोग क्या करते हैं, आज का साधारण व्यक्ति क्या करता है, भक्ति विमुख जो प्रतिज्ञा होती है उसका पालन करने के लिए वो सदैव तैयार होगा। और गुरु महाराज को जो प्रतिज्ञा की है कि मैं रोजाना 16 माला जप करूंगा, मंगल आरती करूंगा, और जब गर्व में भगवान के साथ ये प्रतिज्ञा की है कि भगवान मुझे इस नरक से निकालो, मैं अवश्य संसार में जाकर तुम्हारी भक्ति करूंगा, वो सब प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। लेकिन ये जो साधारण उल्टी सीधी प्रतिज्ञाएं होती हैं वो निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर यहाँ पर अर्जुन को भगवान ये बता रहे हैं कि आपकी प्रतिज्ञा है, फिर भी अर्जुन ने नहीं मारा। अर्जुन को बोला कि ये कितना आतताई है, तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, फिर भी अर्जुन अपने संबंध को याद रख रहे हैं कि ये मेरा गुरु का पुत्र है, और कितना उपकार है आज द्रोणाचार्य के कारण ही मेरे हाथ में गांडीव है, मैं उनके पुत्र को नहीं मार सकता। तो नहीं मारा, बांधे बांधे लेकर आते हैं शिविर में जहाँ पर महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी सब बैठे थे। तो वो गर्व से लेकर आते कि बोला था मैंने मैं सिर्फ सर लेकर आऊंगा, तो मैं पूरा सारा धरी उसका लेकर आया हूँ 1 साल, अब जो कुछ करना होगा इसके साथ करो। अब देखते हैं द्रौपदी का क्या यहाँ पर प्रतिक्रिया होती है इसकी, वो क्या कहते हैं। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और अपनी सेवा को अच्छे से कर सकूँ। हरे कृष्ण।